ओम शांति। शांति वन के इस प्रांगण में और इस विशाल डायमंड हॉल में आप सभी मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा हिमाचल से पधारे हुए भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं कहूंगी कि आप आए इस डायमंड हॉल में, आ गई बाहर, कैसे कहें, किन शब्दों में कहें, अभिनंदन है आपका बारंबार। कार्यक्रम की शुरुआत हम 2 मिनट परमात्मा की स्मृति से करेंगे। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर विराजमान हमारी वरिष्ठ बहनों का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करें। हम सब अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं और राजयोग सुख शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शांति मन की स्थिति है जब मन सब चिंता भय तनाव से मुक्त होकर सुख की अनुभूति करता है। तो शांति का संबंध बाह्य साधनों से नहीं है, लेकिन मन की सूक्ष्म भावनाओं से है, मन के विचारों की दिशा से है। ये आप आने वाले 2-3 दिन में बहुत विस्तार से समझेंगे। और अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ, जलगांव से पधारी हुई 2 कुमारी साक्षी और श्रद्धा, ये आपके स्वागत में एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। चहक उठी हैं वादियां, साक्षी और श्रद्धा। धन्यवाद कुमारी साक्षी और श्रद्धा। और अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय गीता बहन जी, आप बिजनेस और इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप बाल्यकाल में 14 वर्ष की अल्पायु में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। विद्यार्थी जीवन में आप बहुत ही मेधावी छात्रा रही। 1972 में आपने मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और प्रारंभ में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भरूच आदि स्थानों पर आपने सेवाएं दी और उसके बाद भावनगर सब जोन के आप 14 वर्षों तक संचालिका रहे। 1993 से आप यहाँ मुख्यालय में ही माउंट आबू में अपनी ज्ञान सरोवर एकेडमी है, वहाँ आवास निवास और रिसेप्शन के प्रभारी के रूप में सेवाएं देते रहे और कुछ वर्षों से आप यहाँ शांतिवन में ही अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों में आपके प्रवचन या व्याख्यान रहते हैं। 1985 में दिल्ली सोमनाथ से दिल्ली तक होने वाली युवा एकता पदयात्रा में आपने नेतृत्व किया था, कार रैली में भी आपने भाग लिया। ऐसे ही विदेश में भी अनेक देशों में, खासकर यूके, यूएसए आदि स्थानों पर जाकर आपने अपने ज्ञान का लाभ आत्माओं को दिया है। आपका जैसा नाम है वैसा ही आपका जीवन है, जैसे गीता की शिक्षाएं हैं। निष्काम भाव से कर्म करना और अपनी स्थिति को संतुलित बनाए रखना, ऐसा ही हम आपके जीवन में देखते हैं। और मैं कहूंगी दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, फूल तो बहुत खिलते हैं गुलशन में, खुशबू देता है कोई कोई। अपने जीवन के गुणों की खुशबू से आपने अनेक आत्माओं को प्रेरणा दी है और मैं अनुरोध करती हूँ कि शब्द सुमन से आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी,
बाद में करेंगे।
विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, मंच पर विराजमान राजीव शिविर कार्यक्रमों की डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी शिलू बहन जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका उषा बहन जी, आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही है डॉक्टर सविता बहन जी, और इस पूरे ही कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी गीता बहन। आज के इस राजयोग शिविर कार्यक्रम में खास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जिसको हम इंदौर जोन कहते हैं विद्यालय के हिसाब से, और पंजाब जोन जिसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हम उससे पंजाब जोन कहते हैं, वहां से आप सभी भाई बहने खास राजयोग सीखने के लिए पधारे हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में आप पधारे हैं, और जहां आप पधारे हैं ये हमारे मुख्यालय का सबसे बड़ा कैंपस शांतिवन परिसर है। इस पावन मनभावन पुष्पित पल्लवित अरावली की पर्वत मालाओं के तलहटी में बसे हुए इस परिसर में मैं हमारी दादियों की ओर से, हमारे वरिष्ठ भाई बहने और हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से सेवा देने वाले हमारे सभी सेवा साथी भाई बहनों की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माउंट आबू में और उसमें भी ग्रीष्मकालीन गर्मी के दिनों में काफी टूरिस्ट आते हैं, पर आप सभी इस विश्वविद्यालय में यहाँ पधारे हैं इस विद्यालय के ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सीखने के लिए। यही सिद्ध करता है कि आपको परमात्मा पिता से प्यार है, उसके सत्य ईश्वरीय ज्ञान को समझने की जिज्ञासा है, और जो सहज राजयोग यहाँ सिखाया जाता है उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करने की भी आपको इच्छा है आपका ये प्रभु प्रेम योग प्रेम प्रशंसनीय है। विद्यालय इस वर्ष को 2015 से 2016 को योग वर्ष के रूप में मना रहा है और आप जानते हैं कि हमारे देश की प्राचीन योग विद्या प्रसिद्ध है। विदेशी खास भारत में आते हैं योग सीखने और भारत के योगी भी विदेशों में भ्रमण करते हैं योग विद्या का प्रचार करने के लिए। तो हम भारतवासियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो कि वास्तव में योग क्या है। अक्सर योग के नाम पर शारीरिक आसन प्राणायाम की क्रियाएं हम करते हैं या मंत्र जाप, मन को ऑब्जर्व करना, इस प्रकार की कई क्रियाएं हम करते हैं, लेकिन यथार्थ योग किसे कहते हैं। वास्तव में भारत की प्रसिद्ध योग विद्या केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य से तो नहीं हो सकती है। प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें तो कोई भी शारीरिक आसन प्राणायाम की क्रियाओं का कोई उल्लेख ही नहीं है। स्पष्ट है कि वो फिजिकल योग है, फिजिकल हेल्थ के लिए है, पर गीता का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि योग क्रिया नहीं है परंतु योग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। इसलिए हमारे मन की शांति स्थिरता और एकाग्रता हो, बुद्धि हमारी दिव्य और शक्तिशाली बने, सत्य बने, कर्म व्यवहार में शुद्धि हो और संस्कारों की श्रेष्ठता हो, ये प्राप्तियां हमें योग से होती हैं। आज के समय में जबकि हमारे देश के बड़ा प्रधान ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने का प्रस्ताव रखा और ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि विश्व के 125 से भी अधिक देशों ने इस प्रस्ताव को मान्य किया। माना देश विदेश के सभी लोग समझ रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारे जीवन में योग अभ्यास योगिक जीवन पद्धति की बहुत ही आवश्यकता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने का सुनिश्चित किया गया है और भारत सरकार भी उसके लिए बहुत सुंदर प्लानिंग किया है और उसका प्रबंध भी करने लगे हैं। ऐसे समय में आपका योग पूर्ण रूप से सीखना बहुत जरूरी है ताकि अन्य देशों के कोई भी लोग हमें पूछें, हरेक भारतवासी स्पष्ट रीति यथार्थ रीति बता सके कि वास्तव में योग क्या है, न सिर्फ उसका ज्ञान हो लेकिन हमारे जीवन में उसके अभ्यास का समावेश भी हो और योग के द्वारा परमात्मा की याद के अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव भी हमारे पास हो। तो इन गर्मी के दिनों में और कहीं घूमने के बजाय या अपने पारिवारिक सामाजिक कार्यों में न जाकर आप 5 दिन के लिए यहाँ पधारे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहूंगी कि जिस स्थान पर आप पधारे हैं वो सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश के हजारों लाखों लोग योग सीखने आते हैं और हमारे विश्व भर में फैले हुए राजयोग केंद्रों में नियमित रूप से ज्ञान योग का अध्ययन करने वाले राजयोगी भाई बहने योग के गहन प्रशिक्षण के लिए और उसका एक सुंदर अभ्यास करने के लिए इंटेंस मेडिटेशन के लिए यहां पर आते हैं। और जिस हॉल में आप बैठे हैं, डायमंड जुबिली हॉल, जो एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो यूनिक है ही, इतना बड़ा पिलर लेस हॉल है जहां 20,000 लोग बैठ सकते हैं और अनेक अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन का भी यहां प्रबंध है। ये व्यवस्था तो इसमें है ही, लेकिन इसकी जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि ये वो स्थान है, वो हॉल है जहां हजारों लाखों राजयोगी भाई बहने अक्टूबर से लेकर मार्च एंड तक लगभग 20,000 के ग्रुप में आकर परमात्मा पिता से अलौकिक मिलन मनाते हैं। हम सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा सत्य ज्ञान हमें देते हैं और उनके लेटेस्ट जो गाइडेंस और सिग्नल्स होते हैं वो हम यहाँ प्राप्त करते हैं। बहुत ही पवित्र तपस्या से भरा हुआ आध्यात्मिक वाइब्रेशंस इस हॉल का है जो आपको भी योग अनुभव करने में बहुत ही मददगार रहेगा। तो आप आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, हम चाहेंगे कि आप मन से भी पूरा इस कार्यक्रम में रहें और उसका पूरा लाभ लें। 2 दिन कल और परसों, 2 दिन सुबह से रात तक योग के संबंधित विषयों पर हमारे अनुभवी भाई बहने आपको मार्गदर्शन देंगे। हम यही आप सबसे उम्मीद रखते हैं कि आप कोई भी सेशन लेक्चर मिस नहीं करेंगे। जीवन में उपयोगी आत्म कल्याण की बातें समझने का मौका कभी कभी ही मिलता है। हमारे जीवन का अधिकतर समय व्यावहारिक व्यावसायिक दुनियावी प्रवृत्तियों में ही खर्च होता है। ये मौका है आपको स्वयं के लिए सोचने का और खुद की उन्नति और कल्याण का, तो आप अच्छे से इसका लाभ लेंगे। आप मेहमान बनकर आए हैं, परंतु हम जानते हैं कि आप प्रभु पिता के प्यारे बच्चे हैं। आपको पता रहे कि ये ब्रह्मा कुमारियों की संस्था नहीं, हम तो सेवा में यहाँ उपस्थित है, निमित्त है, पर ये तो आप, हम और सर्व के परमपिता परमात्मा का प्यारा घर है, सो आपका भी घर है। तो आराम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, यहाँ आपको नौकरी धंधे पर जाने की चिंता नहीं है, बहनों को भोजन बनाने की चिंता नहीं है, सारी व्यवस्था आपको तैयार मिलेगी, इसलिए कि आप ईश्वर के इस ज्ञान को अच्छी तरह अध्ययन कर सके। आप धार्मिक हैं, कई ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन आपने किया होगा, पर ये हमारी सुनी सुनाई कथाएं, गाथाएं, कहानियां नहीं है, ये हमारे जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल, जो स्वयं परमात्मा सत्य ज्ञान और योग विद्या के रूप में हमें देते हैं, वो आप सुनने और समझने जा रहे हैं। तो उस अर्थ में ये परम शिक्षक परमात्मा की रूहानी यूनिवर्सिटी है और ये सतगुरु परमात्मा का सत्य दरबार है, तो इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप भाग्यशाली हैं, हमारे सब वरिष्ठ भाई बहने भी इन दिनों में यहाँ ही उपस्थित रहते हैं, उनके मननशील अनुभव सिद्ध विचार आपको प्राप्त होंगे। हमारी आदरणीय दादी जानकी जी भी यहाँ है, हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी आपसे मिले, तो हर प्रकार से प्रयास किया गया है कि आपका कार्यक्रम संपूर्ण रूप से हो। तो हम आपसे बहुत ही शुभकामना रखते हैं कि आप इतने महान बनकर जाएं, मेहमान बन के आए हैं पर महान बनकर जाएं और विश्व कल्याण के ईश्वरीय कार्य में परमात्मा पिता के मददगार साथी बन जाएं। पुनः आपका शुभ स्वागत, सत स्वागत, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता बहन जी, आप सभी अपने प्रभु पिता के घर में आए हैं और साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी आए हैं, तो जो ज्ञान आप यहाँ 2-3 दिनों में प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान आपने और किसी यूनिवर्सिटी में प्राप्त नहीं किया होगा, और इसीलिए जैसे गीता बहन जी ने भी अनुरोध किया कि आप सभी अपनी कक्षाओं में समय पर नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे, पूरा लाभ लेंगे, ऐसी अपेक्षा है। और अभी मैं निवेदन कर रही हूँ हमारे मधुर वाणी ग्रुप के भाई बहनों को, आपका नृत्य के द्वारा स्वागत हुआ, शब्दों के द्वारा स्वागत हुआ, और अब मधुर गीत के द्वारा आपके स्वागत में है हमारे सतीश भाई, भानु भाई और रमेश भाई, आपके स्वागत में गीत प्रस्तुत करेंगे।
Oh. आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। अपने घर में आप पधारे, अपने घर में आप पधारे, स्वागत है सत्कार है। आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है। रंग बिरंगे फूलों की ये रूहानी फुलवारी है। ओ, रंग बिरंगे फूलों की ये रूहानी फुलवारी है। दिव्य गुणों की खुशबू से महकी बगिया सारी है। शिव बाबा है बागवान, ब्रह्मा बाबा है माली, सजे मात पिता को पाकर खुशहाली खुशहाली। कल्प कल्प के संगम युग में मिलन की मस्त बहार है। आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है।
और ये बहुत प्यारा घर है, भाग्यवान ही यहाँ पर भगवान के घर पहुँचते हैं।
भाग्यवान ही होते हैं जो भगवान के घर आते हैं। भाग्यवान ही होते हैं जो भगवान के घर आते हैं। वरना कितने चाह कर भी यहाँ पहुँच ना पाते हैं। ये आप तीर्थ महान है, भगवान का जन्म स्थान है। राजस्थान का गौरव है, सारे जग की शान है। बार बार इस दर पे आए, ये साचा दरबार है। आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है। राजयोग तो बना बहाना, यहाँ आपको आना था। बनाने किसी बहाने आपको यहाँ बुलाना था, सबको लाना प्रभु से मिलाना ये कर्तव्य निभाना है। अपने तन मन धन से अपना भारत स्वर्ग बनाना है। मिलता प्यार दुलार है आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। अपने घर में आप पधारे, अपने घर में आप पधारे, स्वागत है सत्कार है आपका ये घर बार है, प्यारा प्रभु परिवार है। स्वागत है आपका स्वागत है, 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 स्वागत है आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मधुरवाणी ग्रुप के सभी भाइयों को। जो भाग्यवान होते हैं वही भगवान के घर आते हैं, तो आप सभी बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। इसी भाव को लेकर के आप अपने में खुशी अनुभव करेंगे। और अभी मैं अनुरोध कर रही हूं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय उषा बहन जी को। आप पॉलिटिशियन इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप पर आपने देश में अनेक प्रतिष्ठित कंपनी और इंडस्ट्रीज में कोर्सेस कराए हैं। गीता ज्ञान के सत्य आध्यात्मिक रहस्य पर भी आपके प्रवचन होते हैं, और पीस ऑफ माइंड चैनल जो ब्रह्मा कुमारीज का 24 घंटे का चैनल चलता है उसमें भी आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। आप जाम्बिया अफ्रीका में इस विद्यालय के संपर्क में आए, और आपके माता पिता जब भारत में शिफ्ट हुए तो उसके पश्चात आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। प्रारंभ में मुंबई हैदराबाद में सेवाएं दी, और 1993 से आप यहाँ मुख्यालय में ही रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विदेशों में भी अनेक स्थानों पर, अनेक देशों में जाकर के आपने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुभव का लाभ अनेक आत्माओं को दिया है। और मैं आपके लिए कहूंगी कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, कलियां फूलों को खिलना सिखाती हैं, और उषा बहन जी राजयोग के द्वारा सभी को जीवन जीने की कला सिखाती हैं। तो आप हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों और सेवाओं से अवगत कराएंगे। आप सभी विद्यालय को तो जानते हैं, लेकिन विस्तार से जो सेवाएं विद्यालय के द्वारा की जाती हैं उसके बारे में आप सुनेंगे।
ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय शिलू बहन जी, आदरणीय सविता बहन, गीता बहन तथा सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सभी शांतिवन के इस पावन परिसर में पधारे हैं। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। वैसे तो जहां से भी आप आए हो, ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों को आपने बहुत समीप से देखा होगा, और बहने किस तरह से वहां कार्य करती हैं, समय प्रति समय अनेक कार्यक्रमों में आपने भाग लिया, वहां पहुंचे, परंतु जब यहां आए तो ये अंदाजा भी शायद नहीं होगा कि इतना विशाल पैमाने पर यह कार्य चल रहा है, क्योंकि यहां के जो विशालता और बृहत्पना आपने देखा उससे जरूर ये महसूस हुआ होगा कि ये कोई साधारण संस्था नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को दिव्य साक्षात्कार एवं अनुभूतियां कराते हुए उनका जीवन परिवर्तन करके उन्हें एक श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त बनाया। 14 साल वहां हैदराबाद सिंध कराची के अंदर रहे और पार्टीशन के बाद भारत आना हुआ। भारत में विशेष माउंट आबू को चुना गया और माउंट आबू को इसीलिए चुना क्योंकि शास्त्रों में भी इसका गायन है कि पांडवों की अंतिम तपस्या अरावली की पहाड़ियों में पूरी हुई थी। ये स्थान का नाम आबू अर्बुदा देवी से निकला है और अर्बुदा देवी मां सरस्वती का दूसरा नाम है और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने वेदों का ज्ञान मां सरस्वती को इसी पहाड़ी पर दिया था। यहां के जो भी साइट सीइंग स्पॉट्स है, चाहे वो दिलवाड़ा मंदिर हो, गुरु शिखर हो, अदर देवी हो, अचलगढ़ हो, सारे आध्यात्मिक महत्व को लिए हुए हैं, इसीलिए विशेष परमात्मा ने भी इस भूमि को चुना। 1950 में यहां आने के बाद 52 से सारे भारत के अंदर धीरे धीरे अनेक स्थानों पर सेंटर्स खुलने लगा और तब से लेकर के वो छोटा सा एक पौधा जो था आज विशाल वट वृक्ष बन गया है। और इस वो छोटी सी एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया था आज इतना विशाल बृहद विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। इसको विश्वविद्यालय क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्यालय माना जहां कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है, जहां पढ़ाई होती है, हर बात को तर्क से समझा जाता है और महसूस किया जाता है, तभी जीवन में उसको ग्रहण करने की क्षमता आती है। जब तक कोई बात समझ में ही ना आए तो उसको ग्रहण कैसे करेंगे? तो इसीलिए तर्क की कसौटी पर हर बात को कसी जाती है और जैसे ही वह स्पष्ट होती है तो उसको जीवन में ग्रहण करना, धारण करना आसान हो जाता है। दूसरा है, इसको विद्यालय इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कोई भी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी के सामने एक लक्ष्य रहता है कि इस पढ़ाई से मुझे क्या बनना है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले के सामने एक लक्ष्य रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले के सामने एक लक्ष्य रहता है मुझे वकील बनना है। इसी प्रकार इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले के सामने भी एक लक्ष्य रहता है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रेष्ठ आचरण कैसे ले आना है अपने जीवन में, ताकि अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव कर सके। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भी गृहस्थी दिखाया है, आज का मनुष्य भी गृहस्थ धर्म में रहता है, परंतु उनका गृहस्थ आश्रम कहते हैं और आज के मनुष्य का गृहस्थ जंजाल कहते हैं। तो गृहस्थ जंजाल को गृहस्थ आश्रम कैसे बनाएं, ये शिक्षा और लक्ष्य यहां दिया जाता है। और उसके लिए न कोई जिम्मेवारी छोड़नी है, न कोई कर्तव्य को छोड़ना है, न घर बार को छोड़ना है, लेकिन घर गृहस्थ में रह करके ही इस शिक्षा को मिल करके जीवन के अंदर अप्लाई करना है। दूसरा, इसको विद्यालय इसलिए कहा जाता कि जिस तरह विद्यालय में अनेक सब्जेक्ट्स होते पढ़ने के लिए, वैसे यहां पर भी मुख्य रूप से चार सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। ये चार विशेष यहां का सब्जेक्ट्स है। आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा का यथार्थ ज्ञान, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, समय की गुह्य गति का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, इस तरह अनेक गुह्य रहस्य को समझने वाली आध्यात्मिक बातें होती है। दूसरा सब्जेक्ट है योग का, कि मन को एकाग्र कैसे करना है, जो मन अनेक दिशाओं में भटकता रहता है उसको फोकस कैसे करे, और योग की जो शक्तियां हैं उसको जीवन के अंदर हम कैसे अनुभव करें, पॉजिटिव ऊर्जा को कैसे विकसित करें, ये दूसरा सब्जेक्ट है यहां का। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा, जो प्रैक्टिकल है कि वैल्यूज को कैसे अपने जीवन में ले आए, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने जीवन के अंदर उन वैल्यूज को स्थान देने लगेंगे तो अपने जीवन को वैल्यूएबल बना सकेंगे। और चौथा सब्जेक्ट है यहां का ईश्वरीय सेवा, कि आज दुनिया के अंदर समाज सेवा करने वाली अनेक संस्थाएं हैं, परंतु ब्रह्मा कुमारी जो सेवाएं दे रही है वो जैसे मूल को पानी देने की सेवा है। जैसे एक व्यक्ति वृक्ष के पत्ते पत्ते को पानी दे और कहे कि वृक्ष के पत्ते पत्ते को पानी दिया लेकिन फिर भी वृक्ष सूखता ही चला जा रहा है, पत्ते पत्ते को देने की आवश्यकता नहीं, मूल को देने की बात है। इसी तरह कहा जाता है ज्यो ज्यो दवाई की त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया, अनेक प्रकार की सेवा करने के बावजूद भी गरीबी बढ़ती गई, क्योंकि शायद आत्मा के संस्कारों को सींचा नहीं गया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हर आत्मा के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन किया जाता है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर अगर गरीबी देखा जाए तो पैसे की इतनी नहीं है जितनी चरित्र की गरीबी है, श्रेष्ठ संस्कारों की गरीबी है। तो इसीलिए वो सींचने का कार्य यहां किया जाता है। और इस तरह से ये चार सब्जेक्ट्स है यहां के। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भी जुड़ा हुआ है एज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर उनको एक ग्रेड स्टेटस प्राप्त है, जो उनके कई डेलिब्रेशंस में भी ब्रह्मा कुमारीज पार्टिसिपेट करती है, और वहां पर जो ऑफिस है वहां से कई लोगों को काउंसलिंग प्राप्त होता है। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कई प्रोजेक्ट्स को ब्रह्मा कुमारीज ने वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के माध्यम से, अपने 145 देशों के नेटवर्क के माध्यम से उसको कोऑर्डिनेट किया हुआ है, और इसीलिए उनको पीस मैसेंजर अवार्ड के रूप में भी सम्मानित किया गया है। ऐसे अनेक अवार्ड्स भी प्राप्त हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत करीबन 19 प्रभाग बने हुए हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, एजुकेशन विंग, सोशल सर्विस विंग, पॉलिटिशियंस विंग, मेडिकल विंग, महिला विंग, बच्चों का एजुकेशन विंग, इस तरह से अनेक विंग्स बने हुए हैं, रूरल डेवलपमेंट विंग, जो अनेक क्षेत्रों के अंदर इस प्रयोग में रहते हैं कि आध्यात्मिकता का समावेश उस प्रोफेशनल फील्ड में कैसे किया जाए। और उस रिसर्च में काफी अच्छी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है और उसके रिपोर्ट्स जो है यूनाइटेड नेशंस तक भी गए हैं और साथ साथ भारत सरकार को भी वो रिपोर्ट्स पेश किए गए हैं। और इस तरह से उन प्रभागों में आध्यात्मिकता का समावेश करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा कई ट्रेनिंग कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तरह से कई ट्रेनिंग कोर्सेज तैयार किए गए हैं जो अनेक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर उसका समावेश किया गया है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मुख्य रूप से यहाँ हेडक्वार्टर में 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ये शांतिवन परिसर है, जो करीबन 80 एकड़ लैंड में फैला हुआ है और यहाँ पर ये विशाल डायमंड हॉल, अभी तो हमारी सीजन नहीं है, लेकिन जब हमारी सीजन चलती है, जब बीकेएस का प्रोग्राम्स चलता है, तो करीबन हर ग्रुप के अंदर 25,000 से लेकर 35,000 तक के भाई बहने आते हैं इस हॉल में, उनका रिफ्रेशर्स कोर्स चलता है, साल में 2 बार करीबन वो आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रकाश सम, जो हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लेट दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति स्तंभ है, तपस्या धाम है, विशाल सोलार प्रोजेक्ट है जो इंडिया में नंबर 1 है, इसीलिए उसको इंडिया 1 सोलार प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है, जिसमें भारत सरकार और जर्मन गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज। दूसरा, यहाँ ऊपर आप जाएंगे माउंट पर, तो वहां हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो पांडव भवन मधुबन के नाम से जाना जाता है, जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि रही, जहां पिताश्री ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, ऐसे सभी दादियों का वो कर्म स्थल रहा, कर्म भूमि रही। और वहां पर मुख्य रूप से 4 धाम आप देखेंगे, बाबा का कमरा जो वैसा ही रखा हुआ है, बाबा की झोपड़ी, बाबा का शांति स्तंभ, और जहां बाबा क्लास कराते थे वो हिस्ट्री हॉल, वो 4 मुख्य धाम हैं जो विशेष भाई बहने जाते हैं। और जो मन के अंदर शुद्ध संकल्प आता है, उस शुद्ध संकल्प अपने मन के अंदर करते हैं और बाबा की मदद का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है, जो एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, जहां पर समय प्रति समय ये 19 प्रभागों का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलता है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार्स होते हैं और इस तरह से अनेक ट्रेनिंग कोर्सेज वहां चलाए जाते हैं। जहां पर करीबन हर बैच में 400 से 500 लोग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। अनेक कंपनीज के लोग भी अपने एम्प्लॉयज को वहां भेजते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और चौथा कॉम्प्लेक्स हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां मेडिटेशन एंड मेडिकेशन दोनों का समन्वय किस तरह से अपने जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है, और एक ही छत के नीचे सारी पैथीज आपको मिलेगी, एलोपैथी भी मिलेगी तो होम्योपैथी भी मिलेगी तो आयुर्वेदा भी मिलेगा तो मैग्नेटोथेरेपी भी मिलेगी, हर प्रकार की पैथीज एक ही छत के नीचे मिलेगी। मेडिकल विंग के द्वारा ये वहां पर कई प्रोजेक्ट्स हमारे चलते रहते हैं, ये ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और नीचे ट्रॉमा सेंटर के अंतर्गत कैड का एक विशेष प्रोग्राम चलता है रिवर्सिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, के जिनको भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है और डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन के लिए सलाह दी हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ने एक रिसर्च किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिटेशन के माध्यम से बिना बाईपास ऑपरेशन के उन ब्लॉकेजेस को भी खोला जाता है, जो 90% 100% ब्लॉकेज होते हुए भी। और बाईपास का इतना महंगा जो खर्चा है उससे बचाया जाता है। करीबन 5000 पेशेंट्स पर यह सफल प्रयोग रहा है और बहुत सुंदर भारत सरकार ने हमारे डॉक्टर्स को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। साथ ही साथ यहां ट्रोमा हॉस्पिटल ऑप्थमोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से राजस्थान के आसपास के जितने भी गांव हैं, कई तहसील है, डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें आई कैंप्स लगाए जाते हैं और इतने बड़े पैमाने पर फ्री आई ऑपरेशंस जो किए जाते हैं ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा, ये ऑप्थमोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, शायद ही किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इतने पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ है और काफी सक्सेसफुल। खास पेशेंट्स को गांव से बस में ले आते हैं, ब्रह्मा कुमारीज की बसों में ले आते हैं, ऑपरेशन करते हैं और उसके बावजूद उनको वापस छोड़ के भी आते हैं। इतनी सेवाएं ब्रह्मा कुमारीज दे रही है। तीसरा, यहां मेडिकल विंग के द्वारा ड्रग डी एडिक्शन कैंप चलाया जाता है और आसपास के पूरे इलाकों में तो क्या, लेकिन पूरे भारत में ये कैंपेन शुरू किया है कि माय इंडिया ड्रग फ्री एडिक्शन इंडिया इस तरह से, और काफी अच्छे रिपोर्ट्स हमें मिले हैं, कितने लोग उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं कि जिससे पान मसाला या बीड़ी सिगरेट्स शराब जिसको लत लगी हुई है और छोड़ना चाहते हैं लेकिन क्योंकि छोड़ नहीं पाते हैं उसके इफेक्ट्स के कारण, तो ये फ्री होम्योपैथी मेडिसिन उनको उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको छोड़ने के लिए आसान हो जाए। आप में से भी किसी को अगर छोड़ने की इच्छा हो तो यहां आए हैं, ये बहुत सुंदर मौका है, आपको फ्री मेडिसिन मिलेगी और आप सदा के लिए उससे छूट जाएंगे और आपका गृहस्थ जीवन सुख शांति से संपन्न हो जाएगा, यही हमारी शुभ भावना है। इस तरह से हमारे पास में यहाँ ओल्ड एज होम है, खास करके जो सीनियर सिटीजन है जो अपने जीवन में अंतिम जीवन के दिनों को आध्यात्मिकता के साथ बिताना चाहते हैं तो ओल्ड एज होम शिवमणि है, बहुत सुंदर, काफी ओल्ड एज लोग आकर के यहाँ रहते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। नर्सिंग कॉलेज है, इस तरह से काफी बड़े स्वरूप से यहाँ पर सेवाएं कार्य विधियां चलती है। और आज विश्व के अंदर करीबन 145 देशों में लगभग 9 लाख जितने भाई बहने अपने जीवन के अंदर राजयोग का अभ्यास करते हुए जीवन को बहुत सुंदर सकारात्मक भाव से सकारात्मक दिशा को लेकर के जी रहे हैं। आज ये हमें कहते हुए गर्व होता है कि ब्रह्मा कुमारी इज लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन खाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य जिस तरह विश्व में फैला हुआ था, तो कहते थे कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता ब्रिटिश साम्राज्य में। आज जिस तरह से ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर सारे विश्व में फैले हुए हैं, हमें भी ये कहते हुए गर्व होता है कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। और इस तरह से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अनेक कार्य करते हुए आज आगे संसार में बढ़ती जा रही है, और जो भी भाई बहने उनके साथ जुड़ते जाते हैं उन्हें अंदर में एक बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है कि हम ऐसी चरित्रवान संस्था के साथ जुड़े हुए हैं कि जिस कारण से समाज में लोग भी उन्हें बहुत अच्छी सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण उनके प्रति रखते हैं। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद उषा बहन जी। इस विद्यालय की सेवाओं में विज्ञान और आध्यात्म का सुंदर समन्वय करके इस विश्व को सुखमय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी हम वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय शिलू बहन जी को सुने, उसके पूर्व आप सभी का परिचय हम वरिष्ठ बहनों से कराएंगे। जो भी भाई बहने पंजाब से आए हैं वो खड़े होंगे, जो पंजाब से आए हैं हाथी लाएंगे, सभी बैठिए। जो हरियाणा से आए हैं, हरियाणा से आए हैं हाथी लाइए, बैठिए। हिमाचल प्रदेश से जो आए हैं भाई बहने, हिमाचल प्रदेश से, अच्छा। उत्तराखंड से जो आए हैं हाथी लाइए, जम्मू कश्मीर से हाथी लाइए, बैठिए। मध्य प्रदेश से जो भाई बहने आए हैं बैठिए, राजस्थान से जो आए हैं राजस्थान बैठिए, गुजरात से भी कुछ भाई बहने आए हैं, गुजरात से जो आए हैं बैठिए, छत्तीसगढ़ हाथी लाइए, बैठिए। और जो भी बीके टीचर्स और गाइड भाई बहने आए हैं वो भी खड़े होंगे, बीके टीचर्स गाइड भाई बहन हाथी लाइए अभी। और आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अभी डायमंड हॉल के स्टेज के पीछे बहनों की साइड सीढ़ी की तरफ इकट्ठे होंगे, आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं दी जाएंगी, सभी बीके टीचर्स और गाइड भाई बहने। और उड़ीसा से भी कोई आए हैं, उड़ीसा से भी कोई भाई बहने आए हैं, तो अभी हम अनुरोध कर रहे हैं आदरणीय शिलू बहन जी को, आप राजयोग शिविरों की निर्देशिका हैं, एजुकेशन विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और आपने सुना पूरे विश्व में लगभग 140 देशों में अपने सेवा केंद्र हैं, और वहां से जब विदेशी भाई बहने आते हैं तो उनको ट्रांसलेशन दिया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में। तो आप काफी वर्षों से ये सेवाएं देते रहे हैं, बहुत ही कुशल ट्रांसलेटर हैं, और जब ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम टीवी में प्रसारित होने शुरू हुए तब से ही सोनी टीवी, जी टीवी, जागरण टीवी, आस्था चैनल पर आपके कार्यक्रम आते रहे, और वर्तमान में पीस ऑफ माइंड चैनल में आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। विश्व के पांचों महाखंडों में 70 महाद्वीपों में आपने यात्रा की है। आप बहुत ही बाल्यकाल में मुंबई में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। मुंबई विश्वविद्यालय से आपने बीएससी किया और 1969 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। प्रारंभ में आपने मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल आदि में सेवाएं दी और उसके पश्चात अफ्रीका और मॉरिशस में आप 2 वर्ष रहे। वहां सेवा केंद्र स्थापित करने के निमित्त बने। 1976 से आप मुख्यालय में ही हैं। कोई भी भाई बहने जाएंगे नहीं, कृपया ध्यान दें, आप सभी को इसके पश्चात ईश्वरीय सौगात दी जाएगी, तो आप सभी बैठे रहेंगे। आप 1976 से मुख्यालय में निवास करते हैं और राज्ययोग शिविरों का संचालन कर रहे हैं। बहुत कुशलता पूर्वक आपने राज्ययोग शिविरों का संचालन किया है और अभी तक विभिन्न व्यवसायों के लाखों लोग अपने जीवन का परिवर्तन इन शिविरों के माध्यम से कर चुके हैं। और आपके लिए मैं कहूंगी कि रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, हमें आपके अनमोल मधुर वचन सुनने को मिले तो और क्या चाहिए। तो हम सुनेंगे राजयोग शिविर में जो आपकी दिनचर्या रहेगी और नियम रहेंगे उनका स्पष्टीकरण शिलू बहन जी से।
ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस शांतिवन परिसर में हमारे तरफ से भी आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप अपने ही घर में आए हैं और अपने ही विश्वविद्यालय में आए हैं जहां विश्व की आत्माएं ये ईश्वरीय विद्या के साथ साथ राजयोग सीख रही है। आप जिस कार्यक्रम में पधारे हैं उसका नाम है राजयोग द्वारा सुख शांति की प्राप्ति। यह राजयोग की शिविर में आप सभी आए हैं। वर्तमान समय योग सीखने की इच्छा हर एक व्यक्ति में उत्पन्न हो रही है। योग को जानना, योग को अनुभव करना, योग से प्राप्ति करना, ये हर एक की चाहना है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में ये बात रखी और उसके अनुसार कैसे 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ। और हमारे भारत में और विश्व में यह दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हम बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। वास्तव में तो हमने ये पूरा साल ही इंटरनेशनल योगा ईयर के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि 145 देशों में जहां भी हमारे सेवा केंद्र हैं वहां पर भी ये मना रहे हैं। तो योग तो बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ है, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज योग शब्द को उसका अपभ्रंश कर योगा कह करके केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का ही दूसरा नाम समझ लिया है। कई प्रकार के आसन किए जाते हैं, योगासन के नाम से ये प्रसिद्ध आसन अनेक योगा स्कूलों में सिखाए जाते हैं, परंतु वास्तव में योग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का दूसरा नाम नहीं है। जीवन कैसे हम जिए ये योग सिखाता है, या कहें कि जीवन जीने की एक कला सिखाता है, जीवन जीने की सच्ची शैली सिखाता है। जीवन तो सभी जी रहे हैं, जो भी श्वास लेता है वो जीवन जीता है। जीव जंतु पक्षी जानवर कीट आदि ये सब भी जीवन जीते हैं, जन्मते हैं, जीवन जीते हैं, मरते हैं, ये तो हम चारों ओर देख ही रहे हैं। तो यूं ही जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मानव जीवन जो अति दुर्लभ जीवन माना गया है, जिसको कबीर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, हीरा जनम अमोलक कौड़ी बदले खोए के, कहीं हम इस हीरे समान मानव जीवन को कौड़ी के बदले तो नहीं गंवा रहे हैं। क्योंकि अगर जीवन में दुख कष्ट पीड़ा तकलीफें विघ्न समस्याएं, फिर उसके साथ क्रोध ईर्ष्या नफरत वैर दुश्मनी हेराफेरी बेईमानी झूठ छल कपट चुगली, ये सारी जो मनोविकार की बातें हैं, मनोरोग के रूप में हरेक के मन में व्याप्त हैं, अगर वो जीवन में होंगे तो ये जीवन हीरे तुल्य कहाँ रहा, अवश्य उसको कौड़ी बदले गंवा रहे हैं। और ये जीवन जो प्रभु का वरदान है, प्रभु प्रसाद है इंसान के लिए, वो आज कहीं अभिशाप तो नहीं बन रहा है, कहीं वो एक श्राप का रूप तो नहीं बन रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर मन में टटोलना पड़ेगा कि वास्तव में हम कैसा जीवन चाहते हैं। तो योग हमें वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाता है। तन मन आत्मा इनका कैसे सुंदर समावेश हो और यह जीवन रूपी नाव जो इस संसार सागर पर तैर रही है ये सहज पार हो जाए, कहीं ये न हो कि ये मझधार में ही फंस जाए। परंतु अगर जीवन रूपी नैया इस संसार सागर में सुंदर रूप से तैर रही है ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु शर्त ये है वो पार तब होगी जब संसार रूपी सागर का जल इस जीवन नैया में न आ जाए। अगर नाव पानी पर हो तो एक दिन पार हो जाएगी, लेकिन पानी अगर नाव में आ गया तो पार कैसे होगी, वो तो डूब जाएगी। इसलिए संसार सागर का प्रभाव हमारे ऊपर न हो और हमारा जीवन कमल पुष्प के समान खिले, जिस पर इस कीचड़ का कोई स्पर्श न हो। लेकिन वो तब होगा जब हम अपने आप को पहचानेंगे, जीवन के लक्ष्य को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे, अपने सत्य कर्म को पहचानेंगे। कहा तो जाता है कि कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। हम सब मुसाफिर बनकर इस संसार में आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, तो मेहमान का, मुसाफिर का ये संसार घर नहीं है, घर तो कहीं और है। तो उस घर को भी हम पहचाने, सृष्टि मंच पर हम अभिनेता बनकर के आए हैं। मंच अभिनेता का घर नहीं होता, घर उसको वापस जाना होता है। तो जहां से आए हैं वहां वापस जाना है, तो हम भी यही कहते हैं। तो जहां से आए हैं वहां वापस जाना है, ये किसके लिए कहते हैं? ये शरीर के लिए नहीं कहते हैं। शरीर के लिए तो पता है कि उसकी मंजिल कहाँ है, कहा जाता है मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर पांच तत्वों का है और पांच तत्वों से ये शरीर बना, वापस पांच तत्वों में उनको मिल जाना है। ये तो अस्थाई है, लेकिन जो स्थाई चीज है, जो अविनाशी चीज है, जो अजर अमर चीज है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिस आत्मा के लिए कहा गया है कि भगवान के घर से आई है और भगवान के घर उसे जाना है, वो घर कौन सा है? कब आई, कैसे आई, कब जाना है? जब तक ये हमने नहीं समझा, तब तक ये आवागमन का चक्र जो चल रहा है, उसको भी हम पूरा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है हम खुद को पहचाने। अभी ये 3 मिनट हम सभी सब संकल्पों को समेट करके शांत चित होके बैठेंगे। तो अगले 4 दिन आप योग और उसमें भी राजयोग को बहुत सुंदर रूप से समझेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखेंगे। तो उसके लिए आपके लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम तैयार किया गया है। कल और परसों ये 2 दिन तो सुबह से लेकर के रात्रि तक आपके बहुत सारे व्याख्यान होंगे, और जितने भी ये व्याख्यान होंगे, प्रवचन होंगे, ये सब एक दो से जुड़े हुए हैं, एक दो से उनका संबंध है। और हम यही चाहेंगे कि आप सभी व्याख्यानों का लाभ लेंगे, साथ में अध्ययन करेंगे, उनको जीवन में उतारेंगे, अनुभव करेंगे, और अगर कुछ मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उसको भी नोट करेंगे। हो सकता है कि एक सत्र में जो आपके मन में प्रश्न उठे, वो अगले सत्र में उनका समाधान मिल जाए। पर फिर भी अगर न मिले तो परसों रात को एक अलग से सत्र रखा गया है प्रश्न उत्तर का, उसमें आप अपने प्रश्न दे सकेंगे तो आपको उनका समाधान मिलेगा। तो अगले 2 दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक एक पूर्ण रूप से विद्यार्थी जीवन क्या होता है वो आप अनुभव करेंगे। तो आपको ये टाइम टेबल मिल चुका होगा, सभी को मिल चुका है, जिसको न मिला हो हाथ ऊपर करें। अच्छा, कुछ एक को नहीं मिला है तो हमारा मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर स्वर्णिम प्रभात नाम की बिल्डिंग है, जो पहली बिल्डिंग है, जहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिला होगा शायद, वहाँ से आप ये उपलब्ध कर सकते हैं। और इसी अनुसार आप यहाँ इस कार्यक्रम अनुसार आप अपने क्लासेस में आएंगे, आपके सारे लेक्चर्स यहाँ इसी हॉल में होंगे, और आप सभी को एक बैज भी दिया गया है। जिसको न मिला हो वो बैज राजयोग शिविर नाम से, वो हाथ उठाएं। वो भी कुछ एक को नहीं मिला है तो वो भी आपको वहीं से मिलेगा, या आपके साथ जो गाइड्स आए हैं उनसे आप पूछ लें टाइम टेबल के बारे में या बैच के बारे में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोनों चीजें। उसी अनुसार आपका हर कुछ चलेगा यहाँ, नहीं तो आपको पूछना पड़ेगा अभी क्या प्रोग्राम है, अभी क्या प्रोग्राम है। आपके पास ये टाइम टेबल होना चाहिए और ये बैच भी अवश्य लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैच नहीं होगा तो भी आपसे लोग पूछेंगे आप कौन से प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि यहाँ कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं चारों तरफ। हमारे यहाँ भारत के कई स्थानों से कुमारियाँ आई है जिनकी ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है, कुछ दिल्ली आगरा से कुछ टीचर्स बहने आई है जिनकी विशेष रिट्रीट चल रही है, और भी बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। और अगर आपको ये बैज नहीं होगा तो हर एक आपसे पूछेगा, भोजन कक्ष में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि विजिटर्स भी बहुत आते हैं यहाँ, इसलिए आपको अगर ये बैज होगा तो कोई पूछेगा नहीं। और फिर चौथे दिन यानी आज 5 तारीख है, 6, 7, 8 तारीख को आप सभी माउंट आबू घूमने जाएंगे। सुबह के सत्र के बाद नाश्ता करके आप माउंट आबू घूमने जाएंगे, हमारे अलग अलग स्थानों को देखेंगे वहाँ भी, तो वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ से आए हैं अगर आपको बैज नहीं होगा, तो वहाँ भी पूरा समय बैज लगा के रखना है। अगर बैज आपका गुम हो जाए, फट जाए, तो दोबारा लेना, दूसरा लेना, पर नाम अपना लिख दीजिए तो मिसप्लेस अगर हो भी गया तो वापस आपको मिल जाएगा। किस बिल्डिंग में ठहरे हैं वो भी उस पर लिख देता कि आपको याद रहेगा कि हम कहाँ ठहरे हैं। और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए होंगे, कोई बच्चे भी बहुत आए हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, बच्चे सभी खड़े हो जाएं। माता पिता को तो वैसे हम लोग मना करते हैं कि बच्चों को न लाएं, लेकिन कई कहते क्या करें बहन जी, कहाँ छोड़ेंगे बच्चों को, इसलिए बच्चों को भी ले आए हैं। तो हम लोगों ने यह एक प्रोग्राम रखा है कि बच्चों का क्लास अलग रखेंगे, और बच्चों को भी बैज जरूर देना। बच्चे हाथ उठाएं, हाथ खड़ा करें, हाथ हिलाएं, काफी सारे बच्चे हैं। तो कल माताएं अपने बच्चों को यहाँ लाएंगी सुबह 6:30 बजे, और फिर बच्चों को यहाँ से पीछे की तरफ या एक हॉल है वहाँ पर बच्चों को अलग क्लासेस कराए जाएंगे। और जब बड़ों का यहाँ प्रोग्राम पूरा होगा तो बच्चों का भी पूरा होगा, फिर माता पिता अपने बच्चों को लेंगे। लेकिन बच्चों को बैज जरूर लगा हुआ हो, क्योंकि अगर बच्चा कहीं गुम हो जाए, माता पिता से दूर हो जाए, तो उसको कहाँ जाना है ये उसके बैज पर लिखा होना चाहिए, कहाँ वो ठहरा है। बच्चा शायद न भी जानता हो तो उस पर अगर लिखा होगा तो जरूर अब उनके ठिकाने पर वो पहुंचाया जाएगा, इसलिए बच्चों को भी ये बैज अवश्य लगाना है। तो आपका प्रोग्राम इस प्रकार है, कल सुबह 4 बजे से आपका कार्यक्रम शुरू होगा, 4 बजे प्रातः उठना, और फिर 4:15 से 5:15 बजे तक यहाँ पर इसी हॉल में आपका मेडिटेशन चलेगा। जो आ सकते हैं अवश्य आएं और यहाँ शांति का एक सुंदर अनुभव करें। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त उस समय को कहा जाता है 4 से 5, जहाँ हम लोग तो 3:30 बजे यहाँ उठ करके 4 से 5 करते हैं, आपको फिर भी कहा जाता है 4:15 से 5:15 बजे तक आप करें, और फिर 4:45 के बाद आप वापस जहाँ से आए हैं जाएंगे, और स्वर्णिम दिव्य लोक बिल्डिंग का नाम है, स्वर्णिम प्रभात के बाद दूसरी बिल्डिंग मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में, जहां आप सभी को चाय मिलेगी। चाय आप सभी वहां ले सकेंगे, नीचे सारे डाइनिंग हॉल्स हैं जहां आप चाय ले सकेंगे जिसको भी पीनी हो। फिर आप तैयार होकर के 6:30 बजे सब इसी डायमंड हॉल में आएंगे और 6:30 बजे थोड़ा आपको व्यायाम कराया जाएगा और फिर 7:45 बजे आप सभी का सत्र आरंभ होगा। इसलिए 6:30 बजे के अंदर आप आ जाएंगे तो पहले व्यायाम थोड़ा करके फिर 7:45 के बाद आपका सत्र शुरू करेंगे जो 8:30 बजे तक चलेगा और 8:30 बजे आप सभी नाश्ता करने जाएंगे। नाश्ते के बाद थोड़ा यहाँ शांतिवन का अवलोकन करना, लेकिन 9:50 बजे वापस आप इसी हॉल में आएंगे तो 10 बजे से आपका दूसरा सत्र आरंभ होगा जो 10 से 11:30 तक चलेगा और 11:30 से 1:15 तक तीसरा सत्र चलेगा। दोनों नाश्ते के बाद के होंगे, लंच से पहले, भोजन से पहले, और फिर आप सभी भोजन करने जाएंगे। आपके नाश्ता भोजन का सारा इंतजाम बड़े डाइनिंग हॉल में किए गए हैं, बहुत सारे डाइनिंग हॉल्स हैं जहां पर आप भोजन कर सकेंगे और भोजन के बाद कुछ विश्राम करें। गर्मी का मौसम है, सवेरे तो आप पैदल भी आ सकते हैं लेकिन दिन में आपको बसेस मिलेगी जो आपको मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगी और फिर शाम को 4 बजे वहीं दिव्य लोक बिल्डिंग में चाय मिलेगी और 5 बजे के अंदर वापस इसी हॉल में आना है। 4:45 बजे का लक्ष्य रखें ताकि ठीक 5 बजे हम शाम का प्रोग्राम आरंभ कर सकेंगे। 5 से 6:30, फिर 6:30 से 8:00 और फिर आप भोजन करने जाएंगे और भोजन करके 9:45 बजे आपका फिर यहाँ, कल आपको एक वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी बहुत ही सुंदर है और परसों प्रश्न उत्तर का सत्र रहेगा और फिर तरसों यानी 6, 7, 8 तारीख को प्रातः क्लास के बाद 8:30 बजे के बाद आप नाश्ता करके माउंट आबू जाएंगे। लेकिन उसके लिए बुकिंग बसेस में या टैक्सीज में या जीप्स में आपको करानी होगी साइट सीइंग ऑफिस में, तो जो आपके गाइड्स आए हैं वे आपके लिए ये सब इंतजाम करेंगे। अगर नहीं हैं आए हैं तो आपको ये देखना होगा ताकि कल ही सुबह आप ये अपना बुकिंग करा ले ताकि 8 तारीख को आप जा सके माउंट आबू घूमने के लिए और रात तक ही आप वापस आएंगे। दोपहर का भोजन पांडव भवन जो हमारा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है वहां पर रखा गया है और फिर आप रात तक ही लौटेंगे, रात का भोजन आपका यहाँ होगा और फिर 9 तारीख सुबह आपका एक सत्र होगा और उसके बाद नाश्ता करके प्रस्थान होगा। और कुछ भाई बहने शायद 9 को भी या 10 को भी जाएंगे, कुछ ऐसे भी होगा तो आपके माउंट आबू घूमने की व्यवस्था उसी अनुसार की जाएगी। तो ये कुछ आपके इस प्रोग्राम की रूपरेखा आपको बताई गई, बाकी ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, सूचनाएं हैं, कृपया इनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अमल में लाएंगे। मुख्य रूप से अन्न की शुद्धि ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए यहाँ तो आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, प्रसाद के रूप में आप भोजन स्वीकार करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि ये जो शुद्ध भोजन आप खाएंगे परमात्मा की याद में पकाया हुआ, उनको भोग लगाते हैं, भोजन में नॉनवेज की तो बात ही नहीं लेकिन लहसुन प्याज भी हम लोग भोजन में नहीं लेते हैं और तीखा भी इतना नहीं, खट्टा भी इतना नहीं, बिल्कुल साधारण भोजन है ताकि कहा जाता है गुरु नानक ने कहा सूखा सूखा खाके ठंडा पानी पी, तो इसीलिए हल्का सा भोजन है और ताकि भोजन खा करके आप मेडिटेशन ज्यादा कर सके, यही आपसे हमारा निवेदन रहेगा। और संघ का भी बहुत ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि जैसे अन्न के लिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, वैसे संघ के लिए कहा जाता है जैसा संघ वैसा रंग, तो यहाँ का जो संघ आपको मिल रहा है ये बहुत ही श्रेष्ठ संघ है, क्योंकि सभी एक ही लक्ष्य से आए हैं कि हमें राजयोग सीखना है। और यहाँ का वातावरण भी बहुत चार्ज्ड है, मेडिटेशन हमारा यहाँ चलता रहता है। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आपस में भी आप जितना कम से कम बातचीत करेंगे, धीरे से बातचीत करेंगे, युक्ति युक्त बातचीत करेंगे, मधुर बातचीत करेंगे, उतना वातावरण को और शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए यह हम लोग कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, युक्ति युक्त बोलो, तो ये सारी बातें हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसी में भी यहाँ ना आए, सभी शांति में रहेंगे और किसी प्रकार का व्यसन भी ना हो। आपको बताया गया कि अगर किसी में कोई व्यसन की आदत है तो यह हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ आप जा सकते हैं, आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन देगी जिससे आप अपने उस व्यसन को आप खत्म कर सकेंगे। ये भी एक बहुत सुंदर तरीका है व्यसनों से मुक्त होने का। लेकिन चार दिन तो बिल्कुल सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि आदि कोई भी व्यसन यहाँ पर सेवन नहीं करना है, ये आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। तो और भी कई बातें हैं, ये राजस्थान में आप आए हैं, यहाँ पानी की बहुत तंगी होती है, तो कृपया कम से कम पानी का उपयोग करें। दूर दूर टैंकरों में हमें पानी मंगाना पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, नल के खुले न छोड़ें। अगर पानी नहीं आ रहा है तो नल का बंद रखें, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ हो और बाद में पानी आ जाए तो बेहतर रहेगा। इसीलिए पानी पर थोड़ा सा ध्यान दें, कम से कम यूज करें। बिजली अगर जल रही है, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो जो भाई या बहन आखिर में आता है वो सब बंद करके आए, बिजली जलती न रहे, यूज इतनी न हो, बचत करें। यही जैसे आप अपने घर में करते हो, कितना ध्यान रखते हो, वैसे आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे, यही आप सभी से विशेष निवेदन है। और भी कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, आप सब कुछ ध्यान से आप पढ़ेंगे और उसी अनुसार आपका यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। आपके पास मोबाइल फोन होंगे, ये हर एक की जेब में, पर्स में खिलौने हैं, लेकिन हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि ये मोबाइल फोन यहाँ बजने नहीं चाहिए। आज ही घर में इन्फॉर्म कर दो कि हम आराम से यहाँ पहुँच गए हैं, कृपया तीन चार दिन कोई हमें याद न करे, कोई फोन न करे, हम यहाँ बहुत बिजी रहेंगे। ऐसे आप घर में बता सकते हैं कि आपको फोन कोई न करे, कोई तो इसलिए जरूरत ही नहीं, आप उनको कह दो कुछ आवश्यकता होगी हम ही करेंगे, बहुत जरूरी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने फोन यहाँ आपके बजने नहीं चाहिए, हम यही आपसे निवेदन करेंगे। इसलिए थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यह कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से चलेगा, आपको पूरा पूरा लाभ यहाँ से प्राप्त होगा। यही हम आशा तो क्या, हमें विश्वास है कि यहाँ जो भी अब तक आए हैं बहुत सुंदर अनुभव करके गए हैं, तो आप भी ऐसा ही सुंदर अनुभव करके जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम भी अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर आगे मिलते रहेंगे, आपके क्लासेस कराते रहेंगे। ओम शांति। अभी हम तीन मिनट, ये एक वो बता दो, वो इन अनाउंसमेंट सुना दो।
हम आदरणीय शिलू बहन जी का धन्यवाद करते हैं और ईश्वरीय सौगात हम प्रारंभ करें। उस
Oh, कर